ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः व्रतं सयास्थितो मौनम् आत्मैक शरणो मुनिः निःसङ्गो व्यचरक्षोणीम् अनग्निरनिकेतनः मनो ब्रह्मणि युञ्जान यत्तत्सदसतः परा गुणावभाषे विगुणा एक भक्त्यानुभाविते निरहं कृतिर्निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदृक्स्वदृक् प्रत्यक् प्रशान्त धीर्धीरः प्रशान्तोर्मिरिवोदधिः वासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः। मैत्रेय जी कहते हैं एवं इस प्रकार समुदितः उपदिष्ट तेना कपिलेना श्री भगवान कपिल देव द्वारा प्रजापति ही प्रजा का पालन करने वाले कर्दम जी दक्षिणी कृत्या परिक्रमा करके तम भगवान की प्रीतः प्रसन्न मन से बनाम वन में एवा ही जगाम गए हा बहुत अच्छा हुआ। तो श्री मैत्रेय जी कर्दम जी के मोक्ष का वर्णन करने जा रहे हैं, किस प्रकार वे संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान का धाम प्राप्त किए। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से एवं समुदितस्तेन कपिले न प्रजापति एवं तेन कपिले न समुदितः प्रजापति कर्दमः तम भगवन्तं दक्षिणीकृत्य प्रीतः सन् वनमेव जगाम। भगवान से आज्ञा लिए कर्दम जी कि वे परिव्राजकों के पथ पर चलना चाहते हैं, सन्यासी बनना चाहते हैं, घर छोड़कर जाना चाहते हैं, तो श्री भगवान ने अनुमोदन किया, ठीक है आप कहीं भी जाइए पर मुझको अपने हृदय में लेकर के जाइए, अर्थात 24 घंटे निरंतर मेरा चिंतन करते रहिए, मुझे ही अपने जीवन का सार समझिए, परम लक्ष्य समझिए, तो आप भ्रमण कीजिए। तो जिस गार्हस्थ्य को कर्दम जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रकट किया था, सजाया था, उसको छोड़ने में भी उनको उतना ही सुख हुआ। प्रीतः शब्द, ऐसा नहीं हुआ कि उस सुख सुविधा में भवन को विमान को छोड़ने में कर्दम जी कुछ हिचकिचा रहे हों या अफसोस हो रहा है कि अब तो जमीन पर सोना पड़ेगा, पलंग छूट रहा है, और भी 1000 दासियां थी सेवा करने वाली वहां, तो अब कौन सेवा करेगा, कहां जाऊंगा, क्या खाऊंगा, ये सब सोचे भी नहीं। विमान को देख करके उनको जितना आनंद मिला उससे कई गुना ज्यादा आनंद संन्यास लेने में हो रहा था। प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में भोग भोगने का अधिकार है, घर बनाने का, खाने पीने का, और भी कई तरह का अधिकार है, लेकिन इसके साथ साथ उसका एक कर्तव्य है कि इनको समय पर छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा फिर भी ये छूट ही जाएंगे। अतः स्वेच्छा से और जीवन का एक मुख्य कर्तव्य मान करके इसे छोड़ देना चाहिए, छोड़ना जरूरी है। जैसा कहा जाता है ग्रहण और त्याग, हम लोग ग्रहण करते हैं भोजन, जिस तरह से ग्रहण करते हैं उस तरह से त्याग की भी आवश्यकता होती है। यदि कोई कहीं घर ले तो घर में रसोई घर देखेगा, रसौड़ा देखेगा कि है कि नहीं है ग्रहण के लिए, लेकिन इसके साथ साथ टॉयलेट भी देखता है कि नहीं। ऐसा नहीं केवल ग्रहण करते जाओ और टॉयलेट न हो तो आदमी मर जाएगा, बल्कि भोजन बनाने का स्थान हो या न हो लेकिन बाथरूम तो होना ही चाहिए, है ना? यह तो बहुत जरूरी है। तो जैसे तैसे आदमी गृहस्थ बन जाता है, जो भी हो, चाहे धर्म देख करके या कर्तव्य देख करके या शारीरिक पारिवारिक आवश्यकता देख करके वो बन जाता है गृहस्थ, और ऐसा फंसता है कि वो जानता है कि अब छोड़ने का कोई नियम नहीं है, इसको मरते समय तक परिवार में ही रहना चाहता है और वही जो पहले कर्म किया है, क्रियाएं किया है, उसी को करना चाहता है, परंतु प्रकृति उसे अलाउ नहीं करती है। शरीर कमजोर हो जाता है, आंखों की शक्ति कम हो जाती है, इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है, कुछ कर नहीं पाता है, पर मनोरथ वैसा ही रहता है। जैसे जवानी में मनोरथ रहा वैसे सोचता अभी भी ये काम कर दें, अभी ये काम कर दें, अभी ये काम कर दें, हो नहीं पाता है। शरीर की शक्ति नहीं रहती है, पाचन शक्ति भी काम नहीं करती है, खाने की बहुत इच्छा उसको रहती है लेकिन खा नहीं पाता, पचा ही नहीं सकता, और भी क्रियाकलापों के प्रति मन धावित होता है पर कुछ कर नहीं सकता। अतः त्यागने का नियम है पहले ही, जब तक शरीर अभी स्वस्थ है तो घर छोड़ करके भगवान का भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति सबसे आवश्यक कार्य है। मनुष्य जीवन की वह जिम्मेवारी है, दायित्व है, तो तब तक होता नहीं है भक्ति, भजन होता नहीं है जब तक व्यक्ति अन्य कामों को छोड़ता नहीं, घर गृहस्थी का उत्तरदायित्व में उलझा रहता है तो भक्ति कैसे कर पाएगा। इसीलिए घर गृहस्थी को छोड़ करके और कुछ बरस तक जमकर भजन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी संसार छोड़ने का समय आ जाता है, तो भक्ति करके छोड़ना यह बहुत आवश्यक है। समाज में ये बातें देखी जाती हैं कि किस तरह से लोग किसी कर्तव्य से छुड़ा दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है सरकार में, तो कुछ साल निश्चित किया है सरकार ने, उसके बाद वो रिटायर कर देती है ना। कई लोग हठ करते हैं कि नहीं नहीं अभी मेरा चलना चाहिए क्योंकि पूरा वेतन मिलता है, लेकिन सरकार कहती नहीं अब इनवैलिड हो गए, शक्तिहीन हो गए, अब चलो हटो, तो आधा पैसा देंगे चाहे जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन अब तुम हटो। वहां तो अपने आप फोर्सली त्याग कर देना पड़ता है। जो सरकार भी त्याग करवाती है, रिटायर कर देती है, लेकिन अपने घर के कामों से व्यक्ति अपने आप कभी रिटायर नहीं होना चाहता, भले कर पावे या न कर पावे। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति भी सोचता अभी मैं मालिक हूं, मेरा आदेश चल रहा है, कोई काम नहीं करता है, केवल रिमोट कंट्रोल बोलने भर का काम रहता है, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ऐसा तड़क भड़क दिखाता है कि अभी भी इस घर का महाकंट्रोलर मैं ही और एक दिन ऐसी दशा होती है, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, जब घर के लोग आदर नहीं करते हैं और समय पर भोजन भी नहीं देते हैं, तो और वो चल करके उनको मार भी नहीं सकता, डांट भी नहीं सकता, केवल गाली से काम चलाता है, गाली देने पर लोग खाने को दे देते हैं, कुछ काल तक गाली देकर काम चलाता है, बाद में गाली देने की शक्ति भी नहीं रह जाती, केवल हाथ से इशारा करता है और करता है। यह श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है इसी स्कंद में। फिर भी त्यागने का नामो निशान नहीं होता उसके मन में, त्यागना नहीं चाहता। हमारे गांव में एक बूढ़े व्यक्ति को मैंने कहा कि आपको घर छोड़कर के बनारस जाना चाहिए या वृंदावन अयोध्या जाना चाहिए और शरीर वहीं छोड़ना चाहिए, तो वो कहता है नहीं साधु जी, घर में मरना सबसे श्रेष्ठ है। क्यों दूसरे के स्थान में मरेंगे, अपने खेत में मरेंगे, अपने घर में मरेंगे, हमारी यही योजना है। तो वो व्यक्ति घर में मरा नहीं, अपने घर में नहीं मरा, गांव में एक गड्ढा था, पानी भरा हुआ था बरसात में, और ऐसे जा करके लुढ़क गया, उसमें डूबकर मर गए। ऐसी दशा होती है। तो प्रकृति तो त्याग करवाएगी ही, आप कीजिए मत कीजिए, लेकिन वो अपंग बना करके, अंधा बनाकर, बहरा बनाकर, लंगड़ा बना करके बाद में कहती है जाइए, मजा ले लिए ना संसार का। ये प्रकृति इस तरह से बुलाती है। मूर्ख आदमी सोचता है कि हमको भोगने के लिए यहां बुलाया गया है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अरे भगवान ने जन्म दिया है, खाओ पियो, ऐसे आराम से रहो, ये क्या त्याग तप करते हैं, जन्म मिला है आनंद लेने के लिए, मजा लूटने के लिए, न कि ऐसे हरे कृष्ण करो और एकादशी को उपवास करो, मरो खाए बिना, ये सब करने के लिए थोड़े मनुष्य जीवन, खूब आराम से रहो, खाओ पियो, तो इसी के लिए जन्म मिला है। तो जरा शुरू से और अंत तक विचार कीजिए, क्या यहां सुख भोगने के लिए जीव को जन्म दिया गया, नहीं, दुख भोगने के लिए। सबसे पहले 9-10 महीने तक मां के पेट में रहना पड़ता है जीव को, तो जिसको इंजॉयमेंट के लिए बुलाया जा रहा है, भोग के लिए, उसको शुरू में इतनी सजा क्यों दी जा रही है, बताइए। तो मां के गर्भ में बिल्कुल पैक्ड रहना पड़ता है जीव को, न हिल सकता है, न खुजला सकता है, न कुछ भी, वही कंजस्टेड आंतों के बीच उसे गुजारा करना पड़ता है, एक दो दिन नहीं, 9-10 महीने तक बुलाया गया गर्भ में, और इसके बाद जन्म होता है तो न चलने की शक्ति रहती है, न और कुछ करने की, केवल रोना जानता है बस, छोटा बच्चा बस रोना जानता है, दुख हुआ तो रोना, कुछ कर नहीं सकता है। इसके बाद खेलना चाहता है तो खेलने में माता पिता अलाउ नहीं करते, वो सोचते पढ़ाई करो, तो पढ़ाई उसके लिए एक सजा है, तो वही पढ़ाई में लगा तो कई साल तक पढ़ो 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 पढ़ो, इसके बाद कुछ काम करो, विवाह करो, तो जवानी में विवाह करता है, घर में रहता है, तो इतनी कामनाएं होती हैं, इतनी कामनाएं होती हैं, वो पूरी नहीं होती हैं, तो उस समय भी वो दुखी ही रहता है। किसी भी युवक से पूछिए कि तुम सुखी हो, तो कहेगा नहीं अभी ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं। कामनाओं की आग जलती रहती है हृदय में, सुखी नहीं होता है। और कुछ काल के बाद फिर बुढ़ापा आ जाती है, तो वो कौन एंजॉयमेंट का समय है। और इसके बाद शरीर छोड़कर चला जाना पड़ता है। यदि किसी को भोग भोगने के लिए बुलाया जाएगा तो इतना दंड देकर क्यों बुलाया जाएगा। आप किसी को इनवाइट कीजिए कि आज आप हमारे यहां आइए, बहुत अच्छा भोजन बना है, खाइए पीजिए, लेकिन इसके पहले आपको गंदे नाले में 10 घंटे रुकना पड़ेगा। किसी गटर के अंदर आपको रह करके हमारे घर आना होगा। तो आदमी कहेगा रहने दो रहने दो, हमको ऐसा भोग नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो क्या प्रकृति 9-10 महीने तक हम लोगों को मल मूत्र के थैले में रह करके यहां कोई भोग के लिए बुलाई है। ये तो दंड है, लेकिन फिर भी मूर्ख आदमी समझता है ओहो मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं लक्की हूं, मैं ये हूं ये हूं। क्या लक्की हो? लक्की वे लोग हैं जिनके जीव पर भगवान का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में यही सौभाग्य है। इदम ही पुंसस्तपसस्त तस्वा स्विष्टस्त दत्तस्त चबुद्धि जोगयो अविचितोर्थो कविर निरूपितो जदुत्तम श्लोक गुणानुवाण्यते। जब भगवान के गुणों का विशेषताओं का कोई वर्णन करता है, गाता है, सुनता है, तो यही सब तपस्या का, दान का, सत्कर्म का फल है। मतलब जीवन का यही लाभ है। इस तरह से श्रीमद् भागवतम पढ़ना सुनना यही जीवन का सबसे बड़ा श्रेष्ठ काम है, यही सफलता है। अविचितोर्थ कभी भी निरूपितो, सारे विद्वानों ने यही कहा है कि भगवान उत्तम श्लोक के गुणों का वर्णन करना और सुनना यही मनुष्य के शुभ कर्मों का, तपस्या का, दान का फल है, वेदाध्ययन का यही फल। तो शास्त्र बताता है और पहले के लोगों ने करके दिखाया है, जैसे करदम जी कर रहे हैं, कि भगवान के आदेश को सुनकर वे उनकी परिक्रमा करके घर से निकल गए। निकले तो प्रीत बहुत प्रसन्न मन से निकले। इसके पहले कभी भी आपने इस प्रसंग में नहीं देखा कि विमान के भोगों को भोगते समय या देहूति के साथ रहते समय कश्यप करदम जी के लिए प्रीतः शब्द कहीं नहीं आया, कभी नहीं आया। देहूति की प्रार्थना से उनमें दया आ गई, लेकिन इस दुर्लभ भोग को प्रकट किया उन्होंने तो इसको भोगने में उनको कोई प्रीति शब्द, प्रसन्न हुए ऐसा वर्णन नहीं, पर छोड़ने में प्रसन्न हो गए। प्रीत छोड़ने में प्रसन्न हो गए। एक हमारे गुरु भाई थे, अभी भी हैं, लेकिन बार बार कहा करते थे कि त्याग में बहुत आनंद है। अगर कोई व्यक्ति शौचालय में जाए और उसका पूरा पूरा पेट साफ हो जाए तो कितना आनंद उसे मिलता है, बहुत बड़ा सुख है। ये घर गृहस्थी का जाल माया का एक दिन छूट जाए और पूरा पूरा भगवान कृष्ण के भजन का मौका मिले तो ये बहुत भारी सुख है। यह अनुभव किया करदम जी ने कि छूटा इस भारी बंधन से, प्रसन्न हो गए और वन में वजगाम वन में गए। व्रतम स या स्थितो मौनम आत्मैक शरण मुनि निसंगो व्यचरत क्षोणीम अनग्निर निकेतन। वन में जाकर उन्होंने क्या किया, मैत्रेय जी कहते हैं, वन में जाकर मैत्रेय जी ने मुनियों का व्रत लिया। मुनीनाम इदम मौनम, मौन व्रत का मतलब है मुनियों का व्रत, और स्वयं में मुनि थे, फालतू बात बोलते नहीं थे। वास्तव में मौन का अर्थ है भगवान के गुणों को बोलना और बाकी दुनिया की बात बिल्कुल नहीं बोलना, इसको मौन कहा जाता है। तो पहले से ही ये व्रत रखे थे, लेकिन वन में जाने के बाद मुनियों का व्रत अपनाए, मौनम व्रतम। मुनियों का व्रत क्या है? वो अहिंसा प्रधान व्रत है। किसी जीव की हिंसा न करना, किसी को दुख न देना, खाने पीने और चीज में कंपटीशन न लेना, जैसे तैसे कम से गुजारा कर लेना। हमने पढ़ा है विनोबा जी जो भूदान यज्ञ के संचालक थे, विनोबा जी का नाम सुने होंगे आप सभी, तो उन्होंने किताब में लिखा है कि अच्छा व्यक्ति वो है जो समाज से बहुत कम ले और दे उनको ज्यादा, समाज से कम वस्तु ले, जीने खाने के लिए जो भी जरूरी है ले, और देना हो तो उससे ज्यादा दे। और साधारण व्यक्ति जो होता है जितना समाज से लेता है उतना देता है, और बिल्कुल थर्ड क्लास का आदमी वो है जो समाज से बहुत लेता है देता बहुत कम। तो संन्यास का ये मतलब हुआ कि बहुत कम जो जीवन धारण करने के लिए बेयर आवश्यकताएं हैं केवल उन्हीं को ले, फालतू ना ले। उसे होता क्या है कि व्यक्ति हिंसा से बच जाता है। यहां हिंसा का अर्थ केवल जान मारना ही नहीं है, हिंसा का अर्थ है किसी के अधिकार पर इंक्रोचमेंट करना, आक्रमण करना, इसको हिंसा कहा गया। श्रील प्रभुपाद जी एक बार झांसी में भाषण दिए थे, उस समय महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन की बहुत चर्चा थी भारत में, अपने देश में, तो प्रभुपाद जी को भी बोलने के लिए कहा गया कि आप अहिंसा पर बोलिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यही कहा कि किसी के स्वाभाविक अधिकार का हनन करना ये उसकी हिंसा है। उसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव कृष्ण का नित्य दास है और प्रत्येक जीव को स्वाभाविक अधिकार है, उसका स्वरूप सिद्ध अधिकार है कृष्ण का नाम जपने का, कृष्ण की भक्ति करने का, कृष्ण के गुण सुनने का, बोलने का, कृष्ण से प्यार करने का, सबका स्वाभाविक अधिकार है। अगर इस कार्य में कोई सहायता करता है, जीव को हेल्प करता है, तब तो वह अहिंसक है। और यदि किसी को बाधित करता है, किसी को ऐसा वातावरण दिखाता है कि वो कृष्ण का स्मरण न कर पावे, भक्ति न कर पावे और संसार बंधन से पार न हो, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति हिंसक है, हिंसा कर रहा है। जैसे आजकल के युग में देखिए, ये जितने भी नवजुवकों के नवजुवतियों के चित्र जहां तहां टांगे जाते हैं, पोस्टर बना करके, कोई भी एडवर्टाइजमेंट में इस सिनेमा के जो चित्र बनाए जा रहे हैं, वास्तव में ये सब प्रचार करने वाले महाहिंसक हैं। ये घात कर रहे हैं जीवों के सहज कृष्ण प्रेम को, परिपर्दा डाल रहे हैं। तो स्वाभाविक जीवों की आसक्ति है सांसारिक भोगों में, और ये गंदे चित्र देख करके या टीवी देख करके और उद्दीपन होता है उनकी सांसारिक भावना का। तो ऐसा करने वाले ये महापापी हैं और हिंसक हैं वास्तव में, इन्हें दंड मिलेगा। समाज में ऐसा दृश्य दिखाना चाहिए, ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे लोगों का प्रेम भगवान से बढ़े, न कि भोगों से। जीव तो ऐसे ही भोगों में पड़े हुए हैं, यह है हिंसा। अगर किसी की सहायता नहीं की जाती है, उल्टे सांसारिक प्रोत्साहन दिया जाता है उसको, तो यह उस जीव की हिंसा हुई। और फिर शरीर को काट देना वो तो हिंसा है ही प्रकट, किसी को दुख देना वचन से भी, मन से भी किसी के अनिष्ट का चिंतन करना, यह हिंसा है। सन्यासी का यह धर्म है किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, सबको सहायता देना भगवान की भक्ति में बढ़ने के लिए, यह है सन्यासियों का धर्म। इसीलिए सन्यासी के दैनिक चर्चा में एक प्रवचन करना बहुत जरूरी है कि वह भगवान के गुणों का वर्णन करे। और कोई काम है नहीं, बाल बच्चा का जिम्मेवारी है नहीं उसे, तो उसे शास्त्रों को पढ़ करके, उनका अनुभव करके स्वयं आचरण करना चाहिए और दूसरे का हित करना चाहिए, सबका उपकार करे। यही है मौनम व्रतम, मुनियों का व्रत ये। इसमें व्यस्थित हो गए कर्दम जी, इसमें डट कर लग गए आत्मिक शरण, केवल भगवान एकमात्र उनकी शरण थे और किसी का आश्रय नहीं, किसी से कोई लेना देना मतलब नहीं, भगवान की शरण में रहना। इसको आत्मैक शरण कहा गया है। आत्मा का अर्थ है भगवान और एक का अर्थ है एकमात्र और शरण का अर्थ है आश्रय। एकमात्र भगवान की शरण में रहे, आत्मैक शरण, और किसी का भरोसा नहीं रखता है। वास्तव में उच्च कोटि का भक्त कृष्ण की शरण में रहता है। जैसे जड भरत जी खेत की रखवाली करते, पड़े रहते थे, रखवाली क्या करते थे, उनको देख करके नीलगाय हरिण वगैरह भाग जाते थे। वो कभी भगाते नहीं थे, नंग धड़ंग ऐसे पड़े रहते थे, बहुत पुराना और मैला कपड़ा केवल कमर में लपेटे रहते थे, बाकी कंबल चादर ये सब कुछ नहीं था। एक दिन डाकुओं ने उनको पकड़ा। ऐसा था कि एक मनुष्य को, भद्रकाली को बलि चढ़ाने के लिए पकड़ कर ले जा रहे थे, तो जैसे तैसे वो भाग गया रात में छुड़ा कर। खोजने लगे उसको, तो खोजते खोजते तब तक खेत पर जड भरत जी मिले। टॉर्च से देखा, सब बड़ा शरीर मोटा तगड़ा है, बहुत ब्लड निकलेगा, बहुत मांस निकलेगा, बहुत बड़ा ज्यादा प्रसाद निकलेगा इसमें। वो तो मरियल था, मरने जैसा दूसरा जो भाग गया ठीक हुआ, इसको पकड़ करके ले चलो। तो लोग देखे कहीं अंग कटा तो नहीं है, अगर अंगुली कटी हो, कहीं कुछ कटा हो तो नहीं, उनको ले जाते बलि देने के लिए। देखे बिल्कुल ठीक है और जुवक है, बहुत मोटा तगड़ा है। तो कहे चलो, चल दिए, पूछे भी नहीं कि कहाँ पूछे भी नहीं, और जान गए। वो लोग आपस में बातचीत करते थे कि इसमें तो बहुत मांस निकलेगा, आपस में कानाफूसी कर रहे थे। ले चलो ठीक है। तो पहले कुछ लोगों ने कहा, पहले बांध लो, नहीं तो उस बलिदान की तरह ये भाग जाएगा ये भाग जाएगा। तो उनका हाथ पीछे करके और बांधे, रस्सी पकड़ करके चल रहे थे, चारों तरफ से घेर कर, चलो चलो चलो, तुम्हें भद्रकाली के मंदिर में चलना है। तो चल दिए, जानते हैं कि उनका गर्दन काटने के लिए ले जा रहा है, चल दिए। ऐसे उनका शरीर कट भी जाता, गर्दन कट भी जाता, तो इसलिए उनको इतना भी दुख नहीं होता जितना हम लोगों का कौपीन कोई फाड़ देते। हमको तो दुख हो जाएगा, लेकिन इतना दुख भी उनको नहीं होने वाला। तो देह से बिल्कुल अतीत थे तो इस प्रकार से उनको पकड़ कर ले जा रहे थे, लेकिन भगवान की शरण में थे, तो भगवान का स्मरण कर रहे थे। वो लोग ले गए भद्रकाली जी के मंदिर में, नाच गान चालू किए, खूब हाको डाको खूब किए, गा रहे थे, अपने ढंग का एक गीत गाते हैं काली को रिझाने के लिए। खूब गीत गा रहे थे कि आज तो बहुत बड़ा फीस्ट चलेगा। ऐसे पुआ पूरी सब बना हुआ था और चीज, और उसमें मनुष्य का खून और मांस ये भी खाने वाले थे वो राक्षस। और वो किस लिए बलि दे रहे थे कि जो डाकुओं का सरदार था उसको कोई पुत्र नहीं था, तो भद्रकाली को बलिदान देने के बाद भद्रकाली जी आशीर्वाद देंगी तो इसको बेटा हो जाएगा, इसके लिए पकड़ कर ले जा रहे। खूब गा बजा रहे थे, बहुत खुशी में थे, फेस्टिवल चल रहा था रात के समय, छिप करके गांव से बाहर बहुत जंगल में। अंत में जो पुरोहित था उन डाकुओं का, वो भी नीच बहुत व्यक्ति था ब्राह्मण ही लेकिन बहुत नीच, नाम भर का ब्राह्मण, उसी के हाथ से काटना था उसको, पशु को, नर पशु को, तो तीखा कर रहा था तलवार को, शान धरा रहा था, क्योंकि एक बार में कट जाना चाहिए, जब्बह नहीं करना था ऐसे तमोगुणी लोग हैं कहीं कहीं। अरे किसी जीव को मारना है तो एक बार में मार दो, उसको बार बार रेत क्यों रहे, ये तमोगुण का लक्षण है। तो वो तीखा कर रहा था कि एक बार में मारेंगे, इसके बाद बोला सावधान, गाना बजाना छोड़ो, देखो देखो, और बोला एक दो तीन बोल करके जब ही उनके गर्दन पर मारने जा रहा था, तब तक भद्रकाली मूर्ति को फोड़ करके प्रकट हो गई और तलवार पहले छीन ली, और सबसे पहले जो पुरोहित था उसका मस्तक उड़ा दिया और इसके बाद दरवाजे पर हो गई, खड़ी हो गई दरवाजे पर मंदिर के, और कोई भी निकल नहीं पाया। जो भी थे सबका मस्तक काट दिया। और उस समय काली जी की सखियां दासियां प्रकट हुई, वे लोग बर्तन ले ले करके गरम गरम खून का फव्वारा रोक रही थी, और रोक रोक करके एकदम हॉट पी रही थी, खून पी रही थी, और उन लोगों के सिर का गेंदा खेलने लगी, फुटबॉल मारने लगी। ये काम हुआ जब भरत जी भगवान की शरण में थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं किया कि मेरी रक्षा कीजिए, वो तो सोचे भी नहीं, बस भगवान का स्मरण कर रहे थे कि रूप गुण लीला का स्मरण कर रहे थे। संकल्प भी नहीं किया कि इनको एक तमाचा भी मारा जाए, लेकिन भगवान चाहते थे कि ये सब मारे जाए। देखिए भगवान की कृपा और देवताओं की अकृपा देखिए, अपने ही भक्तों को भद्रकाली जी ने काट दिया और कृष्ण के भक्त की रक्षा की। ये देवताओं का स्वभाव है, देवता लोग देखते हैं कि यह व्यक्ति विष्णु की भक्ति कर रहा है तो लोग बहुत खुश होते हैं, और ये देखते हैं कि हमारी भक्ति कर रहा है तो उतना खुश नहीं होते। जानते हैं कि ये बुद्धू आदमी है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। जत्रास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा। जो व्यक्ति भगवान की निर्मल भक्ति करता है तो उस पर सारे देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, उसे सब आशीर्वाद देते हैं। तो प्रकट है ना, कृष्ण के भक्त की रक्षा किया भद्रकाली जी ने और अपने डिभोतियों को काटकर फेंक दिया। देखिए ये तो प्रत्यक्ष देखा गया है। तो भगवान जैसे तैसे रक्षा कर लेते हैं। किसी सन्यासी के जीवन में जो सबसे प्रथम आवश्यक बात है वो ये होना चाहिए कि उसे निर्भय होना चाहिए, कहीं किसी का भय नहीं होना, क्योंकि वास्तव में भगवान रक्षक है। घर छोड़कर अकेले जा रहा है, कहाँ खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, कहाँ सोएगा, कैसे स्थान में, क्या कभी कोई अटैक कर सकता है, कोई सांप डस सकता है, बाघ खा सकता है, या कोई अपमान करेगा, कुछ करेगा, लेकिन उसे पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित होकर के भ्रमण करना चाहिए। किसी दूसरे का भरोसा नहीं करना चाहिए कि ये हमारा रक्षक है और हमारा ये शिष्य बहुत धनी है, बलवान है, वो हमारा पालन करेगा। अरे कोई क्या करेगा, ये कंगाल क्या कर सकते हैं, कृष्ण पालन करने वाले हैं। तो अपने जीवन को इस प्रकार कृष्ण के सहारे छोड़ देना चाहिए, कहीं भय नहीं होना चाहिए सन्यासी के जीवन में, कहीं नहीं। अभयम सत्व संसिद्धि, भगवान ने दैवी गुणों का जो वर्णन किया है गीता में, तो सबसे पहले वे अभयम शब्द का है, अभय होना। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण रक्षा करेंगे कहीं भी, देश में, प्रदेश में, समुद्र में, वन में, गांव में, शहर में, कहीं भी कृष्ण रक्षक। आत्मिक शरण, और मुनि व्यर्थ नहीं बोलते थे, निःसंगो, यहां निःसंग का अर्थ है किसी को साथ में नहीं रखते थे, कोई किसी को संग नहीं लिए, अकेले घूमते थे कर्दम थे। और निःसंग का एक अर्थ है अनासक्त। सन्यासी को ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं गया और वहां पर लोगों ने बहुत आवभगत कर दिया, स्वागत किया, तो अब दो दिन के बदले चार दिन रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं पर अगर अपमान हो जाए तो वहां से बस भाग जाए एक ही दिन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मान अपमान, सर्दी गर्मी, ये सब सहना और भगवान के भजन में तत्पर रहना, यह है मौन व्रत। अनग्नि रनिकेतन, जब से घर छोड़े तब से भोजन नहीं पकाते थे अपने लिए। सन्यासी को भोजन पकाना नहीं चाहिए अपने लिए। तो भगवान के मंदिर में रहे, भगवान को जो भोग लगता है वही खा ले, ऐसा नहीं कहीं गया तो अपने लिए अब चालू किया पकाना ये वो ये। इसको निरग्नि कहते हैं, निरग्नि। अग्नि से दो काम गृहस्थ करता है, एक तो अपना भोजन बनाता है, दूसरा यज्ञ करता है। तो सन्यासी के लिए यज्ञ करना कोई जरूरी नहीं, इस दायित्व से मुक्त होता है और वो अपने लिए भोजन नहीं बनाता। भोजन बनाना शरीर पोषने के लिए यह संन्यास धर्म के विरुद्ध है। भगवान की सेवा के लिए मंदिर में भगवान के लिए कुकिंग कर सकता है, भगवान को भोग लगाना, भगवान का श्रृंगार करना, ये सब कार्य कर सकता है, लेकिन अपने लिए भोजन बनावे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कर्दम जी निरग्नि हो गए तो अग्नि की सहायता नहीं लेते थे, अर्थात भोजन पकाना बंद कर दिए। क्या खाएंगे? बिना खाए तो शरीर चलेगा नहीं, तो किसी के यहां पहले से वो देख ले कि यह शुद्ध आहार होता है, तो कुछ घरों से थोड़ा थोड़ा प्रसाद मांग ले। कितना प्रसाद मांगने का अधिकार है उसे? जितना से आधा पेट भर सके। आधा पेट से ज्यादा खाने का अधिकार नहीं है उसको। वैसे अगर करेगा तो उसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कभी हो ही नहीं सकता है। तो आधा पेट खाए और आधे पेट में चौथाई पानी से भरे और चौथाई खाली छोड़ दे हवा का संचार होने के लिए। ऐसा आदमी कभी बीमार भी नहीं होगा वास्तव में, नियम है। तो देख ले कि चार घर, दो घर में कहां थोड़ा थोड़ा टुकड़ा रोटी का मांगेंगे, भात मांगेंगे, तो पेट भर जाएगा। और बस घर से मांगे और किसी सरोवर के निकट जा करके वहीं पर खा करके और हाथ मुंह धो करके इसके बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज भी ब्रज में ऐसे बाबा जी लोग हैं जो भोजन नहीं बनाते, ब्रजवासियों के घर से कुछ रोटी के टुकड़े मांगकर खा करके और राधा रानी का भजन करते हैं। बहुत से लोग ऐसे, पर अब तो ये अभी फैशन चल गया कि अपने कुटीर में कुछ कुकिंग के लिए स्टोव रखे हैं और उधर मधुकरी भी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मधुकरी कहते मधुकर, मधु बनाने वाला भंवरा जैसे फूलों से रस लेता है, आसो लेता है, तो फूल को कोई नुकसान नहीं करता, थोड़ा सा लेता है। इसी तरह गृहस्थों के यहां से थोड़ा सा ले, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और कई घर से ऐसे मधुकर की तरह खाना चाहिए, तो उसको माधुकरी वृत्ति कहते हैं। कर्दम जी इस तरह के हो गए। और ऐसे वन में मिलने वाले कंदमूल फल कहीं से जुटाए खा लिए, बस पेट की ज्वाला शांत हो गई, इसके बाद भगवान का भजन करना, ध्यान करना, पूजा करना ही करना। भगवत भजन के अलावा और कोई कार्य नहीं होता। और अनिकेतन, और कोई निश्चित अपना डेरा या आश्रम नहीं होना चाहिए, अपना कोई खास नहीं होना चाहिए सन्यासी का। ये हमारा है, नहीं तो वहां के सुख सुविधा में फंस करके फिर वो घूमेगा नहीं, और घूमेगा भी तो असंतुष्ट रहेगा, कहीं की असुविधा देख करके सोचेगा भागो, अपना घर है ही, क्या भटक रहा है, वो सोच सकता है। तो उसका मन संसार में चला जाएगा, भोगों में चला जाएगा। इसलिए परिव्राजक के लिए अपना कोई निश्चित घर नहीं होता है। घर तो दुनिया में बहुत बने हुए हैं, जहां भी गया लोग तो रखेंगे ही, सन्यासी का बहुत आदर करते हैं लोग। वास्तव में भारतीय संस्कृति में बात बताई गई है कि कोई भिक्षुक सन्यासी ब्रह्मचारी घूम रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए पहले, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब सन्यासी चले तो अपने खाने पीने के लिए एक अलग गठरी बांध ले और बैग ले ले, तो फिर वो भजन क्या करेगा, कैसे भक्ति कर पाएगा? दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों चूल्हे जलते हैं और घर है, कहीं भी रहने के लिए मिल जाता है और खाने के लिए भी लोग पूछते ही हैं। सन्यासी को यह शिक्षा सर्प से लेनी चाहिए, भगवान दत्तात्रेय ने बताया है। सर्प भोजन करता है और घर में ही रहता है, लेकिन अपने लिए घर बनाता नहीं है। कौन घर बनाता है? चूहा घर बनाता है, मूसिक। वो घर बनाने में ही व्यस्त रहता है, छोटा सा जीव लेकिन लंबी लंबा लंबा टनल बनाता है, रहेगा आखिर थोड़े से स्थान में लेकिन बेकार खोदता रहता है जमीन को। और सांप घूमते रहते हैं, तो सांप आता है देखता है कि ये घर है, उसमें वो बिना परमिशन के प्रवेश कर जाता है। चूहा से पूछने की जरूरत नहीं मैं यहां रुक सकता हूं, बल्कि चूहा की उपस्थिति को जान जाता है कि ये मालिक इस घर के यही है, तो और चाव से प्रवेश करता है, तब तो खाएंगे भी और रहेंगे भी। इस तरह से सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को खाए भी और उनके घर में रहे। खाने का मतलब उनकी सुविधा लेना है, वहां प्रसाद भी पाया और घर भी बना है रहा, इसके बाद एक दो टाइम रह करके निकल गए। श्रीमद् भागवत के शब्द हैं कि सन्यासी गृहस्थ को खाता है, खाने का मतलब उनकी सुविधा को लेता है, अपने लिए घर नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई घर बनाया तो फंस जाएगा उसी में फंस जाएगा, उसी के जोगक्षेम की चिंता करेगा, या करेगा वो करेगा वो करेगा, फिर मन उलझ जाएगा। सांप से शिक्षा लेनी चाहिए, और सन्यासी को एक और शिक्षा लेनी चाहिए सांप से कि बातचीत नहीं करनी चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। सांप बहुत कम बोलता है, रहता है बिल में, बहुत कम बोलता है, कभी कभी बोलता है। तो इसी तरह अगर योग्य व्यक्ति मिले, जैसे जनभरत जी को राजा रहुगण मिले, तो अगर योग्य व्यक्ति मिला, जैसे प्रहलाद महाराज को असुर बालक मिले, नारद जी को मृगारी मिला, अगर कोई योग्य व्यक्ति मिला तो वहां बोले, उपदेश करे, नहीं तो चुपचाप बस महामंत्र जप, और बोलने की जरूरत नहीं है। ट्रेन में जाते समय और सब समय चुप रहना चाहिए। इतना ही लोग कहेंगे ना कि अरे ये बेवकूफ है, कुछ जनता नहीं, ऐसे ही साधु बन गया पेट जिलाने के लिए, तो उनकी बात को अमृत मान करके सह लेना चाहिए। कभी कभी सहन नहीं होता है, लेकिन सहने का प्रयास करना चाहिए। एक बार मैं बॉम्बे से सागर जा रहा था सागर मध्य प्रदेश में एक शहर है, वहां भागवत होने वाला था, तो मैं जा रहा था, तो उधर इटारसी से बहुत पहले ही हम लोग जिस कंपार्टमेंट में बैठे थे डिब्बे में, तो उसमें कुछ लोग बैठे थे, 8-10 आदमी, तो खूब हा ही कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। हमारे साथ और 5-6 भक्त थे, उन भक्तों को बहुत तंग कर रहे थे वो लोग, ये बात बताइए, ये बात बताइए, ये बात बताइए, क्यों साधु हो गए, ये कीजिए कीजिए, अरे साधु क्या होना है, पेट पालने के लिए चल दिए हैं, ऐसे बहुत तरह की बात बोल रहे थे, कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो ये कुछ कह नहीं पाते थे। अंत में मेरा एक शिष्य कहा कि आप जो पूछते हैं तो महाराज जी से पूछिए मैं तो स्केप कर रहा था माला झोली लेकर धीरे धीरे जप कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि मैं बोलूं। और वो लोग खूब बोल रहे थे, हाँ 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 हाँ, कोलाहल कर रहे थे। तो एक व्यक्ति ने कहा, तो महाराज जी बोलते हैं फिर भी मैं नहीं बोल रहा था चुपचाप, महामंत्र तो सुन ही रहे थे, हरे कृष्ण सुन रहे थे, महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी कुछ बोलिए, कुछ हम पूछना चाहते हैं मुझे तो क्रोध आ गया था मन में तो मैं कहा कि देखो, एक जगह पर कौए खूब काव काव कर रहे थे, बहुत पेड़ पर बैठे थे बहुत कौए, और काव 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 कर रहे थे, तो वहां पर एक कोयल चला गया, तो कोयल को ये लोग कहने लगे, बोलो बोलो बोलो, लेकिन बेचारे कोयल बोल नहीं रहा था, क्योंकि कौए रुक नहीं रहे थे। तो अगर तुम लोग काम काम करना बंद करो तब मैं बोलूंगा। और इतना सुनते ही एकदम साइलेंट हो गए, चुप हो गए, कोई बोला ही नहीं। अब बोलने में अपनी हीनता समझने लगे, तुम लोग काम काम करना बंद करोगे तब मैं बोलूंगा, तो बंद कर रहे हो, तो बंद तो कर ही दिए थे। हाँ स्वामी जी, कोई भाई मत बोलना, कोई मत बोलना, तो मैं कहा कि अच्छा ठीक है, 5 मिनट महामंत्र का कीर्तन करो, इसके बाद तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी, योग्यता आ जाएगी भगवान का नाम गाने से। तो एक भक्त को कहा कि आप गाइए, मृदंग भी साथ में था, आप गाइए, इन लोगों से गवाइए। वो आगे चालू किया तो उन लोगों को गाना पड़ा, तो पूरा उस कंपार्टमेंट में कीर्तन होने लगा। तो कीर्तन होने के बाद इसके बाद मैं जय जयकार किया, जय ध्वनि किया, उसके बाद कहा ठीक है, क्या प्रश्न है आपका? नहीं स्वामी जी, आपको जो अच्छा लगे बोलिए, हमारा कोई प्रश्न नहीं है। हमारा कोई प्रश्न नहीं है। देखिए आप क्षमा कीजिएगा, हम लोग यही सुनने के लिए ही आपको कुछ उकसा रहे थे, सुनने के लिए उकसा रहे थे। तो मैं अपने से बोला कि देखिए, इस मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और इस जीवन में सबसे बड़ा धर्म है भगवान का नाम लेना। आप लोग कभी से व्यर्थ बात कर रहे हैं, भगवान का गुण गाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ। मतलब हाँ, यही सुनने के लिए तो हम लोग कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कभी कभी सहन नहीं होता है, पर सह लेना चाहिए, चुपचाप सह लेना चाहिए। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं, उनका नाम था एकनाथ या नामदेव कौन, वो गोदावरी में नित्य स्नान करने जाते थे। तो एक दिन की बात है, रास्ते में एक मुसलमान का घर था और कोठे पर था, कोष्ट पर, तो स्नान करके आते थे गोदावरी जी में, तो स्नान करके आते थे तो आते समय ऊपर से उन पर कुल्ला कर देता था, जूठा पानी फेंक देता था, तो वो फिर लौट जाते थे नहाने के लिए, और नहा करके आते थे तो फिर कुल्ला कर देता था। इस तरह से लगभग 10-20 बार किया, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं थे और न तो रास्ता बदलते थे, उसी रास्ते से आते थे नहा करके, और कई बार गए नहाए, कुल्ला करता था, लेकिन अंत में ये हार गया कुल्ला करते करते। लास्ट में आए तो उनके चरणों पर गिर गया कि हमको माफ कीजिए, मैंने बहुत बड़ा आपका अपराध किया। तो वो कहते हैं भक्त की, नहीं आपके कारण मुझे कई बार गोदावरी में नहाने का मौका मिला, धन्य है आप, आप ऐसी कृपा नहीं किए होते तो मैं तो एक ही बार स्नान करके चला गया हूं, वो तो पानी पानी हो गया बिल्कुल, क्षमा मांगा। साधु को ऐसा होना चाहिए, अगर सचमुच किसी साथ सन्यासी पर कोई थूक दे और चुपचाप रह जाए सह ले, तो समझना चाहिए कि माया को पार कर गया है ना। ये इस तरह की शिक्षा है संसार में, कभी न कभी अपमान हो ही जाएगा, अपमान की बात छोड़ दीजिए, गला कटने का समय आ जा सकता है जैसे जद भरत जी का, लेकिन उस समय भी अगर मति अविचल रह जाए भगवान में और उस हिंसक के प्रति दुर्भावना न हो, तब माना जाएगा पक्का सन्यासी, भगवान पर आश्रित है। इस तरह मैं अनिकेतन पर बोल रहा था कि साधु का, विरक्त का कोई निश्चित घर नहीं होना चाहिए, दुनिया के सारे घर उसके होते हैं, सारे रसोई घर उसके होते हैं, तो क्यों एक जगह अटैच्ड रहेगा? जहां जाए लोग फ्री खिला देते हैं, तो क्यों अपने लिए बनाएगा? अपने लिए बनाएगा आदमी तो थोड़ा बनाएगा, करेगा, कभी बनाने की इच्छा भी होगी, कभी नहीं होगी, कभी बिना खाए रह जाएगा, लेकिन नहीं बनाएगा, दुनिया में घूमे तो इतना लोग खिलाते हैं कि वो इतना खा ही नहीं सकता। ये अनुभूत विषय है। एक एक दिन में कई कई जगह निमंत्रण लोग देते हैं कि यहां खाइए, यहां खाइए, कहां खाएगा? थोड़ा सा खा करके कृष्ण का भजन करना चाहिए। और कर्दम जी अपने मन को परब्रह्म भगवान विष्णु में लगाए थे, मनो ब्रह्मणी जुंजानो यत्तद सदसतः परम गुणावभासे विगुणे एक भक्त्यानुभावितः। मन ब्रह्मणी जुंजान, अपने मन को ब्रह्म में लगाए थे, किसी भी माया के उत्पादन में नहीं लगाए थे, किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का कभी चिंतन नहीं करते थे, चिंतन किसका करते थे? ब्रह्म का। ब्रह्म से तात्पर्य है अप्राकृत विषय श्री भगवान, श्री भगवान के स्वरूप का, लीला का, गुण का स्मरण करते रहते थे। हम लोगों का भी मन कहीं न कहीं रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मन कहीं न कहीं न लगा हो। कोई अपने घर का चिंतन करता है, कोई कुछ का चिंतन करता है, कोई किसी चीज का, लेकिन मन भगवान के सुंदर रूप में अभिनिविष्ट हो, यह जीवन की सफलता है। कर्दम जी का मन भगवान में लगा था। भगवान कैसे हैं? सत और असत, कार्य और कारण, इन दोनों से परम, परे हैं। इस संसार को बनाने में दो तरह की बातें देखी जाती, एक कारण और दूसरा कार्य। कारण है, जैसे ये बेंच बना है, यदि काठ का हो तो वृक्ष जो है वो कारण हुआ और टेबल कार्य हुआ, और वृक्ष भी कार्य हो जाता है, कारण है पृथ्वी। इस तरह कई वस्तुओं का मूल जो कारण है वो तो भगवान है, लेकिन भगवान के बाद भी और कई कारण होते हैं, भगवान से ही निकला हुआ, और अंत में कार्य। कार्य का अर्थ है प्रोडक्शन, कोई वस्तु मैनिफेस्ट होती है। तो भगवान कारण से भी परे हैं और कार्य से भी परे हैं। कार्य से तो प्रकट परे हैं, लेकिन कारणों के भी कारण हैं, सर्व कारण कारण। कोई भी वस्तु इस संसार में बनी है तो उसका कोई कारण है, फिर उसका कोई कारण है, उसका कोई कारण है, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है, वो स्वतः सिद्ध वस्तु। ऐसे विचार किया जाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, हु मेड गॉड, भगवान को किसने बनाया? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, पहले भगवान का लक्षण जान करके प्रश्न करो। गॉड इज वन हु होम नो वन मेड। भगवान स्वतः सिद्ध वस्तु है। भगवान की एक परिभाषा ही है कि भगवान को कोई नहीं बनाया, वो सबको बनाया। तो प्रश्न ही नहीं बनता कि भगवान को कौन बनाया। मूर्ति पूजा को देख करके कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं, भगवान को तो आदमी ने बनाया है, ऐसे कहते हैं, ये आदमी ने भगवान को गढ़ा है। लेकिन वास्तव में भगवान को आदमी नहीं गढ़ सकता है। अगर कोई कहे कि इस पत्थर को आदमी ने गढ़ा है, तो उस व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि ये पत्थर कहां से लाया, वो कहां से पत्थर लाया, अपने पेट से निकाला? पत्थर पहले से है तब तो उसको गढ़ा है ना, और पत्थर गढ़ने के लिए लोहा चाहिए, छेनी चाहिए, वो कहां से लाया? किसी कलाकार से पूछा है, कहां से लाया? हम जन्म लेते हैं तो खाली हाथ आते हैं, कोई कुछ औजार लेकर के, और ना तो अंडरवियर लेकर के, ना लोटा गिलास, कुछ लेकर के नहीं आता है ना। कोई है ऐसा कुछ भी लेकर के आया है? नंग धड़ंग आते हैं रोते हुए। जन्म देने वाली मां तो बेहोश रहती है, दूसरी स्त्री उठाती है, उसको पोछती है, सहलाती है, और थोड़ा बढ़ते बढ़ते कुछ पढ़ाई लिखाई कर लिया तो लगता है भगवान के विरुद्ध बोलने, भगवान नहीं है ये, नहीं है, वाह रे वाह, भूल गए उस दिन को। इस तरह से जन्म हुआ और उसी तरह से मर भी जाएंगे। ये देह और सारी वस्तु, सारी फैसिलिटी छोड़ करके जाना पड़ेगा, लेकिन बीच में इनका नाराबाजी सुनी, क्या बोलते हैं, भगवान निराकार है, इसीलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो मारने नहीं आएगा, जो मन करे वो करो। इनको पता नहीं है कि भगवान आते हैं तो ठंडा कर देते हैं दुष्टों को। परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब भगवान आते हैं तो उनसे भी झगड़ा करते हैं, जैसे कंस, जरासंध, शिशुपाल, ये भगवान से झगड़ा कर रहे थे, परंतु भगवान के सामने कौन टिक सकता है? भगवान तो अनंत बल के आश्रय है, जिस जिसने विरोध किया उसका दमन हो गया, इसको भगवान कहते हैं। भगवान को जिसने चैलेंज किया, अत्याचार किया, उसको उन्होंने मरवा दिया। ऐसा नहीं कि भगवान इस संसार में धर्म का प्रचार करने आवे और उनको ही सूली पर टांग दिया जाए, ऐसा भगवान नहीं होता है। भगवान में अनंत बल होता है, कृष्ण को देखा जा सकता है। कौन ऐसा व्यक्ति था जो चैलेंज किया और उसको भगवान ने शांत नहीं कर दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो वे हथियार भी नहीं उठाए, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, और सबको मरवा दिया भगवान ने। पहले ही कहे अर्जुन से कि सब मारे गए हैं, देखो तुम निमित्त मात्र बनो, जस लो, कोई नहीं बचेंगे। इसको भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब ये नहीं होता किसी को भी भगवान कह दो, इसको भगवान कह दो, इसको कह दो, इसको कह दो, ये सब गलत फहमी है। वास्तव में भगवान कृष्ण है, शास्त्र कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन सब बातों को देखना चाहिए। तो इस संसार में भगवान के विरोधी लोग बहुत रहते हैं, बहुत प्रकार की बात बोलते रहते हैं, परंतु भगवान सब ठीक कर देते हैं यहां आकर। तो मैं यहां पर यह वर्णन कर रहा हूं कि भगवान कार्य और कारण दोनों से परे हैं, वो यहां का प्रोडक्शन नहीं है, और न तो जो कारण है वो भी है, कारणों के भी कारण भगवान है। तो ये बात हो रही थी कि भगवान वो है जिसने सारे जगत को उत्पन्न किया है, भगवान को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। यदि वे मां यशोदा के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं तो प्रकट हो रहे हैं, प्रकट होना और जन्म लेना दोनों में अंतर है। अपने परम भक्त को, यशोदा जी को, देवकी को मां बना करके भगवान प्रकट हुए, देवहूति जी को अपनी मां के रूप में स्वीकार किए, वो प्रकट होते हैं, लीला है भगवान की। लेकिन वास्तव में भगवान सर्व जगत के कारणों के भी कारण है, सबके मूल है। फिर भी वो प्रश्न पूछ रहा था एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से, नहीं आखिर तो भगवान किसी से बना होगा, किसी ने भगवान को बनाया होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जरा तुम विचार करो, तुम किसी से उत्पन्न हुए हो? उसने कहा कि हाँ मैं अपने फादर से जन्म लिया। और तुम्हारा फादर? अपने फादर से। और उसका फादर? और वो जन्म लिया अपने फादर से। तो कोई मूल फादर होना चाहिए ना, कि केवल पीछे ढकेलते जाओगे तो कोई समाधान नहीं मिलेगा। कोई तो एक मूल होना चाहिए ना, ये कॉमन सेंस से समझा जा सकता है। तो इसका कारण वो, इसका कारण वो, बाप का कारण दादा, दादा का कारण प्रपितामह, ये वो, ऐसे ऐसे पीछे जाते जाते, ये कोई बुद्धि नहीं है वास्तव में। कभी कभी लोग पूछ देते हैं पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ, और यदि आप यह कहिए कि पहले बीज हुआ तो कहते हैं बीज आया कहां से, और उनका समाधान ढूंढिए कैसे वो समझेंगे, बुद्धू समझ नहीं पाते। अगर ये कह दीजिए कि पहले वृक्ष आया तो कहेंगे बिना बीज के वृक्ष कैसे हुआ। इसलिए गीता में भगवान उत्तर देते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्श्वनाथनम्, मैं सभी जीवों का, सभी प्रोडक्शन का आदि बीज हूं, मुझसे सब उत्पन्न हुआ। सीधा बोलते भगवान मूल है, उन्हीं से वृक्ष निकले हैं, बीज निकला है, चाहे देवता, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब उन्हीं से जन्म लिए। सर्व योनि सुकौंते मूर्ते असंभवंत या तासा ब्रह्म महत ज्योनि अहम बीज प्रदो पिता, मैं पिता हूं, सबका बीज मैं हूं, भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि भगवान बीज हैं तो फिर भी मूर्ख पूछते रहते हैं ये कहां से हो गए, और तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है तो क्या किया जाए। अगर दिमाग में कुछ मांस होता, हड्डी होती तो समझ सकते, लेकिन केवल धूल और गोबर भरा है तो क्या समझ पाओगे। केवल इस तरह से किसी बात को टालते जाना, समझने की चेष्टा नहीं करना, यह बहुत बड़ी मूर्खता है। किसी बात को सही ढंग से समझने का प्रयास करे व्यक्ति तो समझ जाता है, लेकिन पहले से ही हठ किया है कि हमें समझना ही नहीं है, हमें केवल तर्क देना है। तो तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतेव विभिन्न, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क से कोई बात सिद्ध नहीं की जा सकती, ये महाभारत कहता है। तो इस प्रकार भगवान सत और असत, कार्य और कारण से परे हैं, गुणावभा से, और प्रकृति के जो भी गुण है, ये उत्पादन है, इनको प्रकाशित करते हैं भगवान। इस संसार में, ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है सबको उन्होंने रचा है, सबको वे प्रकाशित करते हैं, और स्वयं विगुण है, स्वयं निर्गुण है, वे प्रकृति के गुणों के अंदर नहीं है। उनका शरीर, उनका धाम, उनके परिकर, उनका वस्त्र, जो कुछ भी है सब दिव्य है, चिन्मय है, माया के द्वारा रचा हुआ नहीं है, उसको विगुण कहते हैं, गुणातीत निर्गुण, एक भक्त्यानुभावित। ऐसे भगवान का अपरोक्ष साक्षात्कार कहां होता है, कैसे होता है? एक भक्त्या अव्यभिचारिणिया भक्त्या, जब व्यक्ति कोई शुद्ध भक्ति करता है तब भगवान का अपरोक्ष अनुभव होता है उसे। अपरोक्ष अनुभव का अर्थ है क्लियर, बिना संशय के भगवान कैसे हैं, कितना सुंदर हैं, कितना दयालु हैं, कितना ऐश्वर्य है उनमें, इस बात का साक्षात्कार करता है। भगवान प्रकट होते हैं भक्त के हृदय में या मंदिर में कब? जब कोई अनन्य भक्ति करता है भगवान की, भगवान से प्रेम करता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। चैलेंज से नहीं प्रकट होंगे। कोई कहे कि अगर भगवान है तो हमारे सामने प्रकट हो, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा कि है। ऐसा कोई कहे तो क्या भगवान को गरज है कि तुम मानो? मान लीजिए अगर दो चार उल्लू, उल्लू को इधर क्या कहते हैं, उल्लू कहते हैं, उल्लू, अगर दो चार उल्लू मीटिंग करके, चाहे दुनिया के सारे उल्लू कॉन्फ्रेंस करें पूरा निमंत्रण दे करके, और वे उल्लू बोले कि हम सूरज को नहीं मानते हैं, क्योंकि दिन में उन उल्लुओं को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ऐसे भगवान ने सृष्टि की है एक पक्षी की, कि रात में उसकी आंख देखने लगती है अंधकार में, और प्रकाश में बंद हो जाती है आंख, बंद हो जाती है मतलब देखने की शक्ति बंद हो जाती है, साकिट रहता है आंख का लेकिन देख नहीं सकते, देखने का पावर खत्म हो जाता। तो मान लीजिए सूरज को कभी देखे नहीं, सूरज की सत्ता को, सूरज के प्रभाव का अनुभव नहीं किए, और सारे उल्लू मिल करके मीटिंग करें, और उसमें कोई उल्लू राज हो, कोई उल्लुओं का सरदार हो, और कहे कि सब लोग नारा बोलो हम सूरज को नहीं मानते हैं कि वो है, तो क्या सूरज को गरज है कि ये उल्लू हमको समझे? और क्या सूरज उधर से संदेश भेजेगा, नहीं नहीं भाई हम हैं, हमको मानो, हम तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं, प्रकट होने पर भी तो इनकी आंख और बंद हो जाएगी, देख ही नहीं पाएंगे। तो इन उल्लुओं के विपरीत बोलने से सूरज की सत्ता में कोई क्षति नहीं हो सकती है। तो कुछ लोग अगर बोल रहे हैं कि भगवान नहीं है, ये नहीं है, अगर है तो हमारे सामने प्रकट हो, और नहीं तो हम कहेंगे कि नहीं है, तो तुम कहते रहो ना, अंधे मर करके चले जाओगे नरक में, जमराज जी सब देखेंगे बीच में ये हल्ला किया, ये किया, वो किया, भगवान निराकार है या नहीं है या ये नहीं है, क्या तुम्हारे डर से भगवान प्रकट हो जाए क्या? बताइए, कोई चैलेंज करे कि भगवान नहीं है, अगर नहीं आते हैं तो मैं हल्ला करूंगा नहीं है, तो क्या भगवान को गरज है कि तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए? भगवान प्रकट होते हैं कैसे? एक भक्त्यानुभावित, जब शुद्ध भक्ति की जाती है तब भगवान का अनुभव भक्त कर लेता है प्रत्यक्ष। भगवान प्रकट हुए हैं कई भक्तों के सामने, अनंत अनंत भक्त ऐसे हुए हैं जिनके सामने भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन भक्ति से, प्रेम से प्रकट होते हैं, न कि किसी के चैलेंज से और मूर्खता से प्रकट हुए। क्या इस समय कोई प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लिखकर भेज सकता है कि आप हमारे घर आइए, नहीं तो मैं आज से प्रचार करूंगा कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं? तो क्या इस संदेश को पढ़ करके प्राइम मिनिस्टर तुरंत प्रोग्राम बनाएंगे क्या? अरे भाई चले नहीं तो वो तो प्रचार करेगा कि हम प्राइम मिनिस्टर नहीं है। उनको हंसी आएगी, देखो इसको, वो कोई विचार भी नहीं करेंगे, लेटर को तुरंत रद्दी कागज में फेंक देंगे, बेकार कहां का पागल है ऐसा बोला। तो कुछ लोग शौक से कहते हम नास्तिक हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हो लेकिन ईश्वर के एजेंट तुम्हें ठंडा कर देंगे अच्छी तरह से, मानोगे? अभी तो मां के गर्भ से आए हो ना, बूढ़ा होकर के मरोगे, जमराज के हवाले जाओगे, तब पता चलेगा कि ईश्वर है। ईश्वर को नहीं मानते, इतना तुम्हारा अधिकार हो गया, भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते हो, और यहां चौकीदार को मानना पड़ता है कि नहीं? अगर कहीं लिखा हुआ है कि नो एडमिशन, इसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते, तो वहां हाथ जोड़ना पड़ता है, और वो व्यक्ति कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो सिक्योरिटी को माने ना, चौकीदार को माने, उसे पूछते हो, कई परिस्थितियों से बाध्य है, ईश्वर को नहीं मानते हो और लाल सिग्नल है तो वहां खड़ा हो जाना पड़ता है, माने कि नहीं? रुकना पड़ता है ना, और जरा लाल सिग्नल को लांघ करके चलो तो तुमको पुलिस बता देगा, फाइन लगेगा, ये लगेगा। एक भगवान ही ऐसे स्वतंत्रता दे दिए हैं और अपने धाम में रहते हैं, आते नहीं हैं जल्दी, तो इधर से हल्ला करते हैं, भगवान है ही नहीं, भगवान तुम्हारे डर से मर गए ना। भगवान है ही नहीं, यही बातें सब रावण आदि कहते थे। रावण जब सीता जी का हरण करके ले गया तो उसको बहुत लोग समझा रहे थे कि ऐसी गलती मत करो, ऐसा खतरा मत लो, राम मनुष्य नहीं है, वे परब्रह्म है, भगवान है, अभी भी सीता को लौटा दो, यद्यपि हरण करके लाए यही काफी अपराध है, लेकिन अभी भी अगर लौटा दोगे, रिटर्न कर दोगे तो तुमको मारेंगे नहीं। मंदोदरी समझा रही थी, रावण की धर्मपत्नी समझा रही थी, और भी कई लोग समझा रहे थे, लक्ष्मण जी ने एक पत्र लिखा था, अंगद जी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, और उसके कई मंत्री समझा रहे थे, एक पुत्र भी था समझा रहा था, इन्हें ऐसी गलती मत कीजिए, भगवान बहुत कृपालु हैं, अभी भी लौटा दीजिए, वो कुछ नहीं करेंगे। तो वो कहता है, क्या भगवान है, क्यों ऐसी गलत बात बोल रहे हो, वो मनुष्य भी है तो अच्छा मनुष्य नहीं है, जिसका बाप घर से निकाल दिया, वन में कर दिया, वो कैसा नालायक बेटा है, यही प्रमाण है, वो किसी काम का नहीं, और वो क्या करेगा, क्या करेगा, अभी बीच में तो समुद्र है, समुद्र लांघेगा कैसे, यह कैसे आ सकता है लंका में। और जिस दिन ये खबर मिली कि सेतु बांध करके वो लंका में आ गया, राम आ गया, तो रावण के 10 मुख से निकला, समुद्र बांध दिया, पयोधी बांध दिया, ये बांध दिया, वो बांध दिया, समुद्र के 10 पर्यायवाची शब्द निकले थे, समुद्र पर पुल बांध दिया, पुल बांध दिया। ये संवाद देने वाला निश्चित झूठ बोल रहा है, जरा पता लगाओ तो, पता लगाओ तो, समुद्र पर पुल बांध दिया, अच्छा ठीक है, जब उसके बाद भी कहता है ठीक है तो पुल बांध दिया, तो उसके सेना में है कौन, तो है बहुत बड़े बड़े बानर हैं, भालू हैं, ओ तब तो घर बैठे आहार दे दिया ब्रह्मा ने हम लोगों को, हमारे सैनिक बहुत दिन से भूखे हैं और इन भालुओं को बानरों को पकड़ पकड़ कर खाएंगे। और जिस दिन भेंट हुई, उन बानरों की अद्भुत शक्ति थी, ये सारे राक्षस जब मारे जा रहे थे, बानर जब तमाचा मारते थे तो उस पर बेहोश हो जाते थे, ये लोग नाश्ता करने वाले थे बानर और भालू का, इस तरह से मारे गए। रावण भगवान को नहीं मानता था, लेकिन लास्ट में मान गया, मरा बुरी तरह से, मारा गया, और वही केवल नहीं मारा गया, उसका सारा वंश मारा गया, विभीषण जी को छोड़कर सब लोग मार दिए गए, इस तरह की गलती करते हैं। तो भगवान को नहीं मानने वाले जो कहते हैं हम नहीं मानते हैं, वो पापी हैं, सवेरे उनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, अगर दृष्टि में पड़ गए तो गंगा जी का पानी लखना चाहिए, वो छिड़क लेना चाहिए। एक बार मैं कह दिया कि ऐसे पापियों का जो भगवान को नहीं मानते हैं उनका मुख नहीं देखना चाहिए, और अगर दिखाई पड़ गए तो नहा लेना चाहिए। तो एक भक्त पूछ दिया कि ऐसे बहुत लोग होंगे तो दिन भर नहाते नहाते बीत जाएगा। तब मैं कहा ठीक है, गंगा जी का पानी रख ले, या समुद्र भी एक तीर्थ है, उसका पानी रख ले, या बिंदु सरोवर का पानी रख ले, कोई ऐसा दिखाई दिया तो 2-4 बूंद डाल दे, ऐसे शुद्ध हो जाएगा। भगवान को नहीं मानने वाला एक नंबर का पापी है, जिस भगवान ने देह दिया, भोग दिया, दुनिया बनाया, जीने की फैसिलिटी दे रहे हैं, सूर्य चंद्रमा बनाए, पृथ्वी बनाए, हवा दिए सब, और ऐसे प्रभु को नहीं मानना, पापी का लक्षण है वास्तव में। भगवान की तो पूजा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, और जो सत्ता भी न माने, प्रणाम भी न करे, वो तो आदमी है ना, वो गद्दा किसी काम का नहीं है, पापी, कैसे जन्म हो गया उसका जो भगवान को नहीं मानता। तो इस तरह से भगवान कार्य कारण से परे हैं, और भक्ति के द्वारा उनका साक्षात्कार होता है। अनन्य भक्त्या अनुभाविते परोक्षीकृते अपरोक्षीकृते। तो इस तरह भगवान में अपना मन लगाया कर्दम जी ने, निरहंकृतिर निर्ममश्च निर्द्वंद्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्येक प्रशांत धीर धीरा प्रशांतोर्मी रिवोदधि। कर्दम जी के क्वालिफिकेशन का वर्णन किया जा रहा है, कितना भक्ति में अग्रसर हुए। तो सबसे पहले बता रहे हैं निरहम कृति, देह आदि में अहंकार शून्य हो गए, देह में मैं बुद्धि उनकी नहीं थी, अपने स्वरूप में मैं बुद्धि थी। जीव देह से भिन्न है, देह छूट जाता है, आत्मा रहता है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता। तो देह को मैं मानना यह अविद्या का कार्य लक्षण है। तो देह आदि में अहंकार से शून्य हो गए और इस कारण से निर्ममश्च निर्मम हो गए। मम का अर्थ होता है मेरा, मेरी। जीव हमेशा ही संसार में मानता है ये वस्तु मेरी है, घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, भाई मेरा है, ये है वो है। ठीक है, व्यवहार करना चाहिए, लेकिन मन में मानना चाहिए कि नहीं नहीं, कोई मेरा नहीं है। ये दो दिन का संबंध है, छूट जाएगा। वास्तविक संबंधी तो भगवान है, इसको निर्मम कहते हैं। निर्मम का अर्थ कठोरता नहीं है, निर्मम का अर्थ है मेरेपन की भावना से दूर रहना, अहम ममेति से दूर हो गए। निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व का अर्थ है शीत उष्ण आदि से व्याकुल न होना। कभी ज्यादा ठंडा पड़ रहा है, कभी गर्मी पड़ रही है, मान अपमान हो रहा है, भूख प्यास लगी है, तो उसे व्याकुल नहीं होना चाहिए। ये दशा कर्दम जी की हो गई। अगर भूख लगी है तब भी कोई व्याकुलता नहीं है, जाड़ा का दिन है, गर्मी का दिन है, फिर भी वही कार्य करना है। भगवान के भजन में ध्यान में लगे रहते थे। समुद्रिक, समुद्रिक का अर्थ है भेदभाव से शून्य थे, भेदाग्राहक, भेद ग्रहण ही नहीं कर पाते थे। कभी उन्होंने शरीर पर ध्यान ही नहीं दिया किसी के, कि शरीर काला है, गोरा है, स्त्री का है, पुरुष का है, और उसमें भी यह पापी है, यह धर्मात्मा है, ये है, देखा ही नहीं उन्होंने। इतना समदृक्त, सबके प्रति समभाव था, भेदभाव नहीं करते थे वे। आत्मा को सब जगह देखते थे, जीव को। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर यहां पर कोई व्यक्ति लाल कपड़ा पहना है, कोई उजला पहना है, कोई ग्रीन हरा पहना है, कोई पैंट पहना है, कोई साड़ी पहनी है, कोई कुछ पहना है, लेकिन वास्तव में अगर व्यक्ति देख रहा है मनुष्य के रूप में सबको, तो पोशाक के कारण भेद नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए खिलाना हो सबको, तो ये नहीं कहेगा कि तुम हरा पहन करके आए हो इसलिए इस लाइन में मत बैठ, तुम खा नहीं सकते हो, या लाल पहन करके आए हो तो तुमको भोजन नहीं मिलेगा। जैसे हम पोशाक के कारण भेद नहीं करते हैं, उसी तरह से देह के कारण भेद नहीं करते हैं बड़े बड़े लोग। सब में एक ही जीव को देखते हैं, एक ही प्रकार की जीवात्मा सबके भीतर है, सबके भीतर भगवान है। ये भेद नहीं करते हैं, ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये मूर्ख है, ये विद्वान है, ये है, ये भेद नहीं करते। ये भेद दृष्टि व्यवहारिक है और बहुत नीचे धरातल पर यह सब होता है। कर्दम जी में भेद बुद्धि नहीं थी, और स्वदृक, पर इसके साथ यह भी सत्य था कि वे अपने को सब जगह देखते थे। अपने को देखने मतलब अपने वास्तविक स्वरूप पर ध्यान रखते थे, देह पर नहीं। मैं भगवान का नित्य दास हूं, यह दृष्टि उनकी बनी रहती थी। अपने को देखते थे और सबको इसी भाव से देखते थे, प्रत्येक प्रशांत भी, और उनकी बुद्धि प्रमणा थी, भगवान में लगी रहती थी और इसके साथ ही साथ विक्षेप से रही थी। कभी भी उनकी बुद्धि इधर उधर नहीं जाती थी भगवान को छोड़कर, भगवान के पास ही मनराती रहती थी बुद्धि। इसको प्रत्येक प्रशांत धी कहा गया, धीर। और संसार के किसी भी भोग में वो लोलुप नहीं थे, इंद्रियों के वेग से परे थे, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, कभी काम वासना नहीं सताती थी, कभी लोभ नहीं होता था, शांत थे। कैसे शांत थे? जैसे बड़ी बड़ी उर्मियों से, लहरों से, नदियों से समुद्र विचलित नहीं होता है, शांत रहता है। तो कभी मान मिला, कभी अपमान मिला, पर फिर भी सम रहते थे। समुद्र में लाखों नदियां गिरती हैं चारों तरफ से, छोटी नदियों को मिला करके और कई हो जाएंगी, चारों तरफ से नदियां गिरती हैं समुद्र में, लेकिन समुद्र बढ़ता नहीं है, जितना में रहता है उतना ही रहता है। और लाखों करोड़ों टन पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है एक दिन में। हम लोग देखते हैं पानी थोड़ा सा रखें अगर थाली में, तो कुछ देर के बाद पानी उड़ते उड़ते कुछ दिन में खत्म हो जाता है। तो इतना विशाल समुद्र है, तो उसका पानी भी वाष्प बनता रहता है। तो लाखों करोड़ों टन यदि पानी वाष्प बन करके उड़ गया, तो उससे समुद्र घटता नहीं है, और न तो लाखों नदियों के पानी आने से बढ़ता है। इस तरह से जिस साधक को, जिस सिद्ध पुरुष को संसार कितना भी भोग आ करके उसे सुखी नहीं कर पाते हैं, और दुख आ करके उसे दुखी नहीं कर पाते हैं, समुद्र की तरह वह चल रहता है। भगवान ने गीता में एक श्लोक ऐसा कहा है, आपूर्ज माण अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति जदवत तद्वत कामा यम प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। काम कामी विषय भोग की इच्छा वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, भगवान गीता में कहते हैं। बल्कि कामनाएं जिसमें विलीन हो जाती हैं, यहां विलीन होने का मतलब यह है कि जिसे कभी कामना होती ही नहीं है, और विषय भोग उसे मिलते हैं, लेकिन विषय भोग के मिलने से न तो हर्षित होता है न सुखी होता है, और न तो विषयों के न मिलने से दुखी होता है, या और भी कई प्रकार के दुख उस पर आते हैं लेकिन विचलित नहीं होता है। तो समुद्र में बड़वाना लगता है, समुद्र के पानी में कभी कभी आग लगती है और उससे करोड़ों टन पानी जल जाता है, वाष्प बन जाता है, उड़ जाता है, फिर भी समुद्र खाली नहीं होता, उतना ही रहता है। और वर्षा काल में नदियों का पानी बहुत गिरता है तो बढ़ता नहीं। इसी तरह का साधक होना चाहिए, उसे दुनिया का भोग मिले, कुछ भी मिले, लेकिन उससे कोई प्रभावित नहीं होता है। वो लगे कहने, आहा बहुत अच्छा खाने को मिला, बहुत अच्छा पहनने को मिला, ये मिला वो मिला, नहीं, उसे हर्षित नहीं कर पाते और न तो दुख विचलित कर पाते। इस तरह से जैसे प्रशांत उर्मी इव उदध ही, ऐसा समुद्र है जिसकी उर्मिया प्रशांत है, बिल्कुल लहरें नहीं उठ रही, शांत। इस तरह से कर्दम जी हो गए, और अब उनके इस प्रकार के कल्पित उपाधियों के नाश की बात कह करके अब अपने स्वरूप प्राप्ति की बात कह रहे हैं। उपाधि का अर्थ होता है कि हम लोग इस संसार में जड़ शरीर में हैं, विचार में हैं, अज्ञान में हैं। एक दिन ये सब अज्ञान चला जाए, अज्ञान जाने के बाद तब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और जीव अपने स्वरूप में हो जाता है, भगवान का पार्षद बन जाता है। तो यह उपलब्धि है। तो पहले अज्ञान की वृत्तियों के नाश की बात बताए, अब कह रहे हैं किस प्रकार वे भगवान के चरण कमल प्राप्त किए। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञ प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधन। मुक्त बंधन, बंधनम अज्ञानम, जीव के लिए संसार में बंधन क्या है? अज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान न होना और जड़ वस्तुओं को सत्य समझ लेना, यही बंधन है, सबसे बड़ा बंधन यही है। बीच में भी देखिए, अगर किसी व्यक्ति में परस्पर आकर्षण होता है तो बीच में कोई बंधन दिखाई नहीं देता है, लेकिन अज्ञान का बंधन बहुत बड़ा है। वो समझता है यह मेरा है, वो समझता है यह मेरा है, जो दोनों की भावना है कि यह मेरा है यह मेरा है, यह बहुत बड़ा बंधन होता है। बाहर से बंधन दिखाई नहीं देता है, लेकिन अज्ञान ही बहुत बड़ा बंधन है। तो कर्दम जी का बंधन समाप्त हो गया था, अज्ञान समाप्त हो गया था, और इस कारण से भगवान वासुदेव में, भगवान श्री कृष्ण में जो सर्वज्ञ हैं और सभी जीवों के आत्मा हैं, परमात्मा हैं, उनमें लब्धात्मा हो गए। लब्धात्मा का आत्मा का अर्थ चित्त। कर्दम जी का चित्त पूर्ण रूप से भगवान में आविष्ट हो गया, लग गया। भगवान में उन्होंने अपने चित्त को पकड़ लिया, तो पूरा पूरा चित्त चेतना या मन उनका भगवान में अभिनिविष्ट हो गया पूरा। किस कारण से? परेण भक्ति भाव है ना, क्योंकि ये विशुद्ध भक्ति कर रहे थे। भक्ति भाव कथम भूत पर परेण अप्राकृत, शुद्ध भक्ति उसको कहते हैं। कोई कामना नहीं अन्य, कोई वासना नहीं, केवल अपने सहज स्वरूप समझ करके भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, जप करना, इसको परेण भक्ति भावे न कहते। भक्ति भाव था, भक्ति और प्रेम था भगवान के प्रति, और वो बिल्कुल शुद्ध था, किसी उपाधि से नहीं था, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। उपाधि का अर्थ ये होता है, मान लीजिए कोई भक्ति इसलिए कर रहा है कि हम इस मंदिर के हैं इसलिए भक्ति करनी चाहिए, हम इस संस्था के हैं इसलिए भक्ति करनी चाहिए, हम भगवान का खा रहे हैं इसलिए भक्ति करनी चाहिए, सब उपाधि है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त का अर्थ है कि हम कृष्ण के हैं, सहज जीवन है हमारा कृष्ण का भजन करना। जैसे मछली के लिए पानी के भीतर रहना उसका सहज जीवन है, और कोई कामना से नहीं रहती है, पानी के बिना जी ही नहीं सकती है। उसी तरह से जब कोई साधक भगवान कृष्ण के बिना जी ही नहीं सकता है, वो कृष्ण को छोड़ करके दूसरे में मन रख ही नहीं सकता, उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में ही रत रहती हैं बिना किसी कामना के, प्रयास के, तो इसको सर्वोपाधि विनिर्मुक्त भाव कहा जाता है। तो कर्दन जी भगवान के परम शुद्ध भक्ति में लगे थे, इसलिए उनका बंधन अज्ञान दूर हो गया और उनका चित्त पूर्णतः कृष्ण में लग गया। इस दशा में वे सिद्ध दृष्टि प्राप्त कर लिए। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तं अवस्थितं अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। तो वे बिल्कुल उत्तम कोटि के वैष्णव भागवत बन गए, तो सभी जीवों में वे भगवान को देखने लगे। आत्मानं भगवन्तं सर्वभूतेषु अवस्थितं, सब जगह वो कृष्ण को देखते थे सभी जीवों में। इसे ये नहीं समझना चाहिए कि जीव भगवान हो गए, यह कर्दम जी की दृष्टि का वर्णन किया जा रहा है। उत्तम कोटि का भागवत पुरुष वो है जो सब जगह भगवान को देखता है। मध्यम कोटि का भक्त वो माना जाता है जो चार चीज देखता है, और देखता है यह भक्त है, यह भक्त नहीं है, वह भगवान को भी देखता है और भक्त को भी देखता है, अभक्त को भी देखता है, और एक क्या चीज देखता है, ईश्वरे तद्धीनेषु बालिशेषु द्विशत्सु च, और यह भी देखता है कि यह व्यक्ति बालिश है, मूर्ख है, यह व्यक्ति भगवान का द्रोही है, यह व्यक्ति भगवान का भक्त है, और यह भगवान है, चार चीज देखता है। तो भगवान से तो प्रेम करता है और भक्तों से मैत्री करता है और मूर्खों पर कृपा करता है, और जो भक्त नहीं है, द्रोही है भगवान के, उनके साथ द्वेष करता है। ये मध्यम कोटि का भक्त। और कनिष्ठ नया जो भक्त होता है, जो सीख रहा है, वो भगवान के श्री विग्रह से प्रेम करता है, केवल भगवान से नहीं कर पाता है, मूर्ति पूजा करता है, सजाता है, नहलाता है, श्रृंगार करता है, बाकी भक्तों से प्रेम नहीं करता। धीरे धीरे वो हो जाएगा उत्तम भक्त, क्योंकि साधन यही है, भगवान के श्री विग्रह की आराधना करना है, उसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे उत्तम भक्त होता है। कर्दम जी फर्स्ट क्लास के वैष्णव पद पर पहुंच चुके हैं, तो इसीलिए वे भगवान को सभी जीवों में देख रहे थे और सभी जीवों को भगवान में देख रहे थे, इस रूप में कि सभी जीव भगवान के द्वारा पोषे जा रहे हैं, आश्रित हैं, भगवान के अंश हैं, उनकी तटस्था शक्ति के प्रकाशन हैं, उन्हीं के अंश हैं और कोई दूसरा नहीं है। किसी भी जीव को देख करके यही समझते थे भगवान का अंश है, भगवान में है, और भगवान को सभी जीवों में देखते थे। इच्छा द्वेष विहीन न सर्वत्र समचेत सा भगवत भक्ति युक्ते न प्राप्ता भागवती गति। उनका चित्त कैसा था? सम था, और राग द्वेष से हीन हो गया पूरा, कहीं किसी में अटैचमेंट नहीं था और कहीं किसी से द्वेष नहीं था, उनके मन में, और उनका चित्त हमेशा भगवत भक्ति से युक्त था, भगवत प्रेम से लबालब भरा था। अथवा ये कर्दम जी का ही विशेषण है, भगवत भक्ति से युक्त थे, समचित थे, राग द्वेष से हीन थे, इस तरह से उन्होंने भागवती गति प्राप्त किया। गति का अर्थ है ठहराव, जहां भगवान रहते हैं उसको भागवती गति कहते हैं, इसका अर्थ है वैकुंठ। इनको वैकुंठ प्राप्त हुआ, भगवान का पार्षद बन गए, यह है जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, जीवन की सफलता। कर्दम जी भगवान का धाम प्राप्त किए। अथवा भागवती गति का अर्थ है भगवान जैसा स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप, भगवान जैसा धाम, ऐश्वर्य, वैकुंठ धाम तो प्राप्त किए ही, और भी भगवान जैसा। अथवा भागवती गति का अर्थ भगवान जहां रहते हैं वहां चले गए। गति का अर्थ है अवस्थिति, जहां भगवान रहते हैं और भगवान जितने सुंदर हैं, भगवान जितने धनी हैं, उनका जैसा रूप है सब वो रूप प्राप्त कर लिए, सब कुछ प्राप्त कर लिए। ये भगवती गति, भगवान कितना सुखी है और कितना सुंदर है, सब शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अन्यथा जीव की तो और गति होती है, नरक गति है, नारकी गति कहेंगे उसको। इसी मनुष्य लोक में भी देखिए कितनी कितनी गतियां हैं भिन्न भिन्न। कोई ऑफिसर बना है, ऑफिस में रहता है, तो कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, उसकी वो गति हो रही है, वहां हॉस्पिटल में है, रोगी है। कोई ऑफिस में है, कोई विद्यालय में है, कोई अपने घर में है, और किसी की कारागृह में गति हो रही, वो भी एक गति है, अपने कर्म का फल है। और नरक में जाना है, वो भी गति दुर्गति है। लेकिन किसी सौभाग्य से, भगवान की भक्ति से कोई जीव जब भगवान के पास चला जाए तो इसे भागवती गति कहते हैं। तो यह गति कर्दम जी को मिली, पहले से ही भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान की आज्ञा से गर्हस्थ जीवन स्वीकार किया और अंत में सब छोड़ करके भगवान का अनन्य भजन करने लगे, तब भगवान के पास चले गए, उनके पार्षद हो गए। इस तरह कर्दम जी के मुक्ति का वर्णन किया गया, मोक्ष का वर्णन किया गया। अब आगे यह वर्णन किया जाएगा कि किस प्रकार देवहूति अपने पुत्र भगवान कपिल देव के पास ज्ञान लेने के लिए आएगी। कल से इस कथा को प्रारंभ करेंगे।